समय हम सब लोग जीवन के सत्य पर विचार करने बैठे हैं और विचार विनिमय के लिए भी समय रखा है, तो एक भाई ने मुझे लिखकर दिया है कि मानव सेवा संघ की साधन प्रणाली एवं मुख्य सत्संग के विषय में कुछ कहा जाए। प्रातःकाल इसी विषय पर हम जी महाराज का शेष अंकित वचन हो रहा था, तो वो स्वस्थ सब लोगों को सुनाई नहीं दे सका, इसलिए ये प्रश्न करता भाई मेरे इसी विषय पर सुनना चाहते हैं। और बहुत अच्छा विषय है, साधन प्रणाली मानव सेवा संघ की एक अपनी विशिष्टता है। सत्य तो सिर नवीन है सिर पुरातन है, उसमें कोई बदलाव हो नहीं सकता। सत्य वही है जो सदा सदा से है, उस सत्य की अभिव्यक्ति हमारे जीवन में हो जाए इसके लिए जो जो मौलिक उपाय हैं जिनके बिना कोई भी साधना सफल हो नहीं सकती, उन्हीं मौलिक उपायों को एक जगह संगठित करके मानव सेवा संघ की साधन प्रणाली का नाम दिया गया। तो अब हम इसी विषय पर विचार करें कि ईश्वर विश्वासी होते हुए भी और ईश्वर के साथ अपनी आत्मीयता रखते हुए भी अभी तक मेरा जीवन उनसे दूर क्यों लग रहा है? ऐसा ऐसा क्यों नहीं हुआ जैसा मीरा जी ने कहा, ऐसा क्यों नहीं हुआ जैसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, ऐसा अब तक हम क्यों नहीं बन पाए जैसा महात्मा ईसा ने कहा, भक्त प्रहलाद जी ने कहा, ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो ये तो हो नहीं सकता कि मेरा ईश्वर ही है और मैं ईश्वर विश्वासी भी हूँ और दोनों की भेंट मुलाकात न हो। इसको आप मानिएगा, क्यों मानेंगे? ईश्वर भी है और मैं ईश्वर विश्वासी भी हूँ, तो हमारे से उसकी भेंट मुलाकात क्यों नहीं होगी? और जबकि वो दुर्बल से दुर्बल, असमर्थ से असमर्थ, पतित से पतित साधक हो, विश्वासी हो, तो उससे मिलने के लिए वे अपनी उससे सब समय तैयार रहते हैं। तो ऐसा क्यों होगा कि मिलन न हो? तो पहली बात मुझे यही लगती है कि हम लोग इसी को सबसे कठिन मानते हैं। भौतिक तत्वों से बने हुए शरीरों को जिनको हमने अपना माना, उनसे मिल लेंगे, उनके साथ रह लेंगे, उनकी संगति की खुशी उठा लेंगे, इसमें विश्वास करते हैं, जो कि संभव नहीं है। टूट भी जाता है, बिखर भी जाता है, निराशा भी हो जाती है। और जो सदा सदा से अपना है, सब समय मुझको अपनाने के लिए तैयार है, जिसका साथ आज तक कभी छूटा नहीं, आगे कभी छूटेगा नहीं, उसके संग में होने का अनुभव जो है वो हम लोगों को कठिन लगता है। परमात्मा अपने से दूर मालूम होता है और ऐसा विकट लगता है कि पता नहीं कब होता होगा, कैसा होता होगा, किसको होता होगा। यह संदेह अपने जीवन में से पहले निकाल देना चाहिए। संदेह मत करिए कि ईश्वर विश्वासी को ईश्वर मिलन का आनंद आ सकता है कि नहीं आ सकता है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जीवन की वैज्ञानिक प्रक्रिया से जीवन का विश्लेषण करने की जो एक पृष्ठभूमि मेरी बनी हुई थी, उसी आधार पर मैंने अपने को विश्वास पथ का साधक माना और मान करके भी इस सारी प्रणाली को उसी ढंग से समझने की कोशिश की। तो एक बात मेरी समझ में आई, बहुत अच्छी लगी मुझे, कि परमात्मा है ऐसा तो हम सब लोग मानते हैं ना। अगर कोई भाई बहन ऐसे बैठे हो तो ये कहना पसंद करें कि भाई हम तो नहीं मानते, तो मानव सेवा संघ की साधन प्रणाली में उनके लिए भी गुंजाइश है, वे भी हमसे दूर नहीं है। उनकी बात को छोड़ दीजिए अभी थोड़ी देर के लिए। ईश्वर विश्वास की दृष्टि से हम सब लोग इस बात को मानते हैं कि परमात्मा है, तो परमात्मा का होनापन मेरे लिए एक ठोस सत्य है। उसके बाद एक और बढ़िया बात है, परमात्मा है और परमात्मा से अपना नित्य संबंध है। तो भक्तों की शैली हो गई कि उनसे अपना नित्य संबंध है, और दार्शनिक शैली क्या है कि परमात्मा के अतिरिक्त और कोई दूसरी स्वतंत्र सत्ता है नहीं। और अपने में हम भाई बहनों को भास होता है कि मैं हूँ, तो जो व्यक्ति अपने अस्तित्व को अपने द्वारा अनुभव करता है वह परमात्मा के अस्तित्व को इनकार नहीं कर सकता। मैं हूँ ऐसा आपको महसूस होता है कि नहीं? अगर अभी मैं किसी का नाम लेकर पुकारूं कि भाई है कि नहीं है, तो जल्दी से आप सब खड़े हो जाएंगे, कहेंगे मैं हूँ जी। अगर किसी का नाम लेकर पूछूं मैं कि वो यहाँ है कि नहीं है, तो जल्दी से आप बड़े विश्वास के साथ हम सब खड़े हो जाएंगे और कहेंगे मैं हूँ। मैं हूँ, मेरा अस्तित्व है, मेरी सत्ता है। तो महाराज जी कहते हैं कि भैया जरा सोच करके देखो तो इस मैं को, जिसको तुम बड़े सपाटे से कहते हो कि मैं हूँ, इस मैं को तुमने स्वयं बनाया क्या? ये नहीं बनाया। खेत में से उपजाया क्या? नहीं। तो इस मैं की उत्पत्ति जो है वो भौतिक के पदार्थों से नहीं हुई है। जल में सिवाल करती है, खेत में गेहूं उपजता है, लेकिन इस मैं की उत्पत्ति जल में से और थल में से और हवा में से नहीं होती है। इस मैं की उत्पत्ति अलौकिक तत्वों में से है, जिसका तो कभी नाश नहीं होता, जिसको भक्तजन भगवान कहते हैं, जिसको विचारक जन परम तत्व कहते हैं। अपने मैंपन का भाव अभी इसी वर्तमान में हो रहा है, तो इसी वर्तमान में जो मौजूद है वो जिसमें से उत्पन्न हुआ उसकी अनुपस्थिति कैसे मानिएगा? जी नहीं मानेंगे, वो उपस्थित है। तो परमात्मा है, ये भक्तों की शैली है, भगवान है ये भक्तों की शैली है, और अविनाशी तत्व है या विचारकों की शैली है। उस अविनाशी तत्व में से हम सब भाई बहनों के मैं पद की उत्पत्ति हुई है, इसलिए भी उसको इनकार नहीं कर सकते, मानना भी पड़ेगा। बड़े जोरदार शब्दों में स्वामी जी महाराज ने 17 दिसंबर को प्रातः काल मुझको ये युक्ति बताई और कहा कि जाओ तुम सत्संग करो। 16 दिसंबर तो होता है, रात्रि के समय करीब लगभग 10 बजे बड़े जोर का हाथ अटैक हुआ, तो सारी रात तो वैसे ही बीत गया। सवेरे 3:30 बजे भोर में थोड़ी आवाज निकलने लगी गले से, तो पहली बात करने लगे कि देवी जी सत्संग का समय हो गया है। मेरा हाँ महाराज हो गया है, तो जाओ सत्संग करो। कह करके 2-4 वाक्य मुझको सुनाए। मैं का अस्तित्व जो स्वीकार करता है वह व्यक्ति परमात्मा के अस्तित्व को इनकार कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं की उत्पत्ति उसमें से हुई है। तो जिसमें से हमारी उत्पत्ति हुई है और जिसकी सत्ता हम अपने द्वारा अनुभव करते हैं, उसी को भक्त जन भगवान करते हैं। तो परमात्मा है और परमात्मा में से उत्पन्न हुए हम सब लोग हैं। वह अविनाशी अलौकिक नित्य तत्व है और उसमें से हम सभी भाई बहनों के अहम रूपी अणु की उत्पत्ति हुई है। तो ऐसे करके मैंने हिसाब लगाया, तो हिसाब लगाया तो मुझे ऐसा मालूम हुआ कि जिसमें से मुझको बनाया गया तो वो अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं होता, इसलिए मैं पंता भी कभी नाश नहीं होता, वो भी अविनाशी हो गया। भौतिक तत्वों से बने हुए शरीरों का नाश होता है, उसमें भी स्थूल शरीर यही मिट करके मिट्टी में मिलता है, सूक्ष्म शरीर उससे अधिक समय तक टिकने वाला है और कारण शरीर उससे भी अधिक लंबे अरसे तक टिकने वाला है, फिर भी इन तीनों शरीरों का नाश होता है। लेकिन मैंपन जो अलौकिक तत्वों से रचा गया है उसका नाश नहीं होता। तो इस दृष्टि से यदि हम लोग विश्वास पथ के साधक अपने विश्वास को निर्वितल करना चाहें, उसमें से संकल्प विकल्प को हटाना चाहें, संदेह और शंका को मिटाना चाहें, तो इस दार्शनिक सत्य का सहारा ले सकते हैं और अपने विश्वास में बहुत ही दृढ़ता ला सकते हैं कि भाई मेरा नाश का उनको बोध नहीं है, परिवर्तन का अपने को पता नहीं है और जिसमें से ये निकला है उसका भी नाश नहीं होगा। तो उनका नाश नहीं होगा ये बात पक्की हो गई और उनसे हमारा आपका संबंध जो है वह भी अटूट है, ये भी बात पक्की हो गई। अटूट संबंध तो है और भक्तों का भी है, विचारकों का भी है, योगियों का भी है, सभी पंथों के साधक का है, सभी मतों के साधक का है, सभी संप्रदायों के अनुयायियों का है। उस अटूट संबंध में कभी कहीं किसी को कोई कोई संदेह नहीं होता, कोई मतभेद नहीं होता, वो वहां तक तो बात पक्की हो गई। अब एक चीज आ गई अपने सामने जो कि हम लोगों को हमारी कठिनाइयों से पार कराएगी। वो कौन सी बात हो गई कि भूल मुझसे ये हुई कि सदा सदा का नित्य संबंधी जिसको संत ने बताया, ग्रंथों ने बताया, वेद पुराण पुराण बाइबल गीता रामायण सब जगह लिखा हुआ है, उसके साथ हमने अनेक शरीरों के साथ अपना संबंध मान लिया, बस इतनी सी भूल है। और मैं क्या बताऊं, ईश्वर से मेरा नित्य संबंध है इसको तो स्वामी महाराज ने कह के सुनाया, और अनेक शरीरों से मेरा संबंध है, ये माता है, ये पिता है, ये भाई है, ये बंधु है, ये मित्र है, ये पुत्र है, ये पुत्री है, ये संबंध हमने पूर्व दृष्टि से देव बुद्धि से स्वीकार किया। तो इस स्थूल बुद्धि से स्वीकार किए हुए संबंधों का इतना जोरदार प्रभाव मुझ पर है कि जब कभी शांत रहना पसंद करो, जब कभी अकेले होना पसंद करो और बाहर से आंखें बंद कर लो, तो इन माने हुए अनित्य संबंध का प्रभाव अपने पर इतना ज्यादा है कि वही सब चित्र दिखाई देने लगता है भीतर भीतर, और गुरु के कहने से, संत की सलाह से, ग्रंथ के अनुसरण से जिसका ध्यान करने को कहा गया उसका ध्यान नहीं बनता, जिसका चिंतन होना चाहिए उसका चिंतन नहीं होता, जिसके प्रति प्रीति होनी चाहिए उसके प्रति प्रीति नहीं होती, बड़ी भारी बाधा मालूम होती है। तो करो और होता नहीं है, करना है और पार नहीं पाते हैं। तो ईश्वर से संबंध को मानना, ईश्वर के प्रति स्वभाव से जीवन में प्रियता का उदित होना ऐसा कठिन हो जाता है, ऐसा कठिन हो जाता है कि साधक बहुत ही तकलीफ में रहता है। कह दिया गया कि तुम इतनी देर ध्यान करो, बनता ही नहीं है, हैरान है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि देखो भाई, साधन ऐसी कोई मुसीबत की चीज नहीं है कि तुम करना चाहोगे और तुमसे होगा नहीं। संसार में अनेक प्रकार की मुसीबतों से थक कर जितना धन कमाना चाहते थे नहीं कमा सके, जितना सुख भोगना चाहते थे नहीं भोग सके, जितना सम्मान पाना चाहते थे नहीं पा सके, जैसे जीना चाहते थे नहीं जी सके, जिंदगी नापसंद हो गई, मरना चाहते थे तो नहीं मर सके। जी ठीक है, ये सब मुसीबतें हैं। तो इन मुसीबतों से थक करके हार करके संत के पास आए, महाराज मुसीबतों से छुट्टी दिलाओ। क्या मुसीबत है भाई, मेरे से पूछा था संत ने, क्या मुसीबत है तुमको, कोई दुख है देखी जी? हाँ महाराज, बड़ा दुख लेकर आई हूँ। क्या दुख है देखिए बोलो। तुम्हारा जो चार दिन उसको होता नहीं है, बड़ा दुख है। तो मुसीबत ले करके संत के पास आई और उनकी सलाह ली, इसलिए मुसीबतों से छुट्टी पाए। तो संत ने सलाह दी, आपने अपने को साधक स्वीकार किया, साधना का क्रम आरंभ किया, तो साधना भी उसको कहेंगे क्या कि मुसीबत बनकर सिर पर चढ़ जाए? ये अब अपनी दशा हम लोग देखें, हमने ऐसे ढंग से साधना को पकड़ा है कि वो भी सिर पर एक भार बनकर बैठ गया। ध्यान करना चाहते हैं नहीं होता है, भजन करना चाहते हैं नहीं होता है, भगवान में मन लगाना चाहते हैं नहीं होता है। तो ये भी एक ऐसी मुसीबत हो गई जैसे कि संसार की परिस्थितियों में मुसीबतों में हम फंसे हुए थे। तो बात ऐसी नहीं है, साधना उसको करते हैं जो आपको स्वाधीन बना दे, साधना उसको करते हैं जो आपके जीवन में हल्कापन ला दे, साधना उसको करते हैं जो आपसे इस प्रकार से घुल मिलकर एक हो जाए कि आपको पता न चले कि अब मेरी साधना बन रही है और अब मेरी साधना टूट गई। उसको साधना नहीं कहते हैं जो लगे कि कभी बन गई है कभी टूट गई है, ये बात नहीं है। तो ऐसा कैसे होगा भाई? तो उसके लिए स्वामी महाराज को जो जो बातें मौलिक रूप में समझ में आई, उनके ज्ञान में जिस सत्य का दर्शन किया उन्होंने, वो हम लोगों के सामने रखा। तो उन्होंने मानव सेवा संघ की भाषा में क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई देखो, ध्यान किया नहीं जाता है, ध्यान होता है। साधन किया नहीं जाता है, साधन होता है। किया क्या जाता है, सत्संग किया जाता है। सत्संग करो तो साधन होने लगेगा। प्रभु की सत्ता को स्वीकार करो, उनसे अपने नित्य संबंध को स्वीकार करो, तो संबंध की स्वीकृति से जब उनकी महिमा तुम्हारे जीवन में अंकित होगी, संबंध की स्वीकृति से जब स्थिरता तुम्हारे जीवन में आएगी, उनकी उपस्थिति के अनुभव से जब सरलता जीवन में आएगी, तो तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारा ध्यान सब स्वतः ही उनमें लग जाएगा। तो मौलिक बात क्या है कि प्रभु की सरलता को स्वीकार करो। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है कि उनके साथ अपने नित्य संबंध को स्वीकार करो। फिर तीसरी बात, हमारे जैसे कमजोर लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, सबके लिए महाराज नहीं करते थे, लेकिन मुझको कुछ लाना था, समझाना था, घबराई हुई दशा में स्थिरता लानी थी, तो मेरे लिए कहा कि भाई नित्य संबंध के साथ साथ तुम उनकी महिमा भी स्वीकार करो। क्यों? लालची आदमी तो कुछ ऐसा पा करके सब में वो तोड़ पड़ेगा। तो प्रभु सर्वज्ञ हैं, इस बात से मुझे बड़ा आराम मिला, बहुत आराम मिला। क्यों? क्योंकि जन समूह में रहते हुए अनेक बार ऐसा कटु अनुभव पाया था मैंने, बिल्कुल निष्ठल निर्मल हृदय से, बड़ी सद्भावना से, बड़ी प्रियता से बात करो, काम करो, और निकटवर्ती जन समुदाय में से कुछ लोग अकारण ही उसके विपरीत अर्थ लगाने और विपरीत व्यवहार करने में लग जाते हैं। अब किसको किसको समझाते थे, किसको किसको कौन सा सर्टिफिकेट दिखाए कि हमारा हृदय निष्ठल निर्मल है, तो बहुत चीज लगती थी। ऐसा क्या जन समूह, ऐसे समूह में क्यों रहना, ऐसी बातें क्यों जीवन में, बहुत बुरी हुई, बिगड़ी हुई। हमें भी महाराज ने जब बताया कि ये सर्वज्ञ हैं, तो इतना आराम लगा मुझे। मैंने कहा चलो उनको ध्यान नहीं होगा, बहुत आराम मिल गया। और उसके बाद से अभी भी लीजा तो उन्हीं की है। अब तो मुझे ऐसा नहीं दिखाई देता कि कौन अच्छा कौन बुरा और कौन पक्षी कौन विपक्षी, ऐसा नहीं दिखता है। अभी भी उस तरह की परिस्थितियाँ बनती हैं, लेकिन अब मजा आता है। अब हमें लगता है कि अच्छा प्यारे, क्या जाने कहाँ कहाँ मेरी दृष्टि अटकती फिरती, तो आप सब ओर से समेट कर अपनी ही ओर सीखना चाहते हैं। हाँ ठीक है, आपकी जानकारी में गलती नहीं है, आप बिल्कुल सेंट परसेंट मैं जैसी हूँ वैसा ही मुझको आप जानते हो, इस बात से बड़ा रिलीफ हो गया मुझको। अब ना भ्रम होता है और न दूसरों के तरफ ख्याल से कोई तकलीफ होती है, कुछ नहीं, मौज लगती है। क्योंकि जिसको जानना चाहिए वो ठीक जानता है मुझको कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या सोच रही हूँ, क्या विचार रही हूँ और कहाँ कहाँ मेरी गलती है। तो मेरी गलतियों को दूर करने के लिए, मेरी की हुई भूलों को क्षमा करने के लिए, मुझमें निर्भूल होने की सामर्थ्य देने के लिए जो सदैव तत्पर है, ऐसे रक्षक, ऐसे चिंतक, ऐसा अपना नित्य संबंधी पा करके भीतर से भय और चिंता और घबराहट खत्म हो जाती है। तो भय चला जाए, चिंता चली जाए, घबराहट चली जाए, और मेरा एक संबंधी ऐसा है, एक अकेला वही है, सारे संबंध उसी में समाहित है, उसके अतिरिक्त तो और किसी से संबंध ही नहीं है। इसमें जरा सी सजीवता आपके जीवन में आ जाए तो ये बात बिल्कुल पक्की आपको दिखाई देने लग जाएगी कि उसके अतिरिक्त तो और कोई है नहीं। तो चिंता चली जाए, निश्चिंतता आ जाए तो साधन बन गया, भय चला गया तो साधन बन गया, उनकी सर्वज्ञता की महिमा में विश्वास हो गया तो बाहर की उलझने खत्म हो गई। एक ही है मेरा अपना, एक ही है मेरा अपना। तो जब कोई बात भीतर उठ रही है तो किससे निवेदन करूं, तो दो चार की याद आएगी। कोई संकट खड़ा हो जाए तो जगत की ओर देखने की जरूरत रहेगी। एक भरोसे, एक बल, एक आस, विश्वास। अभ्यास करना पड़ा कि अपने से निकल आया। मेरे भाई ने जो प्रश्न लिखा है उसमें लिखा है मानव सेवा समिति साधन प्रणाली, इसीलिए ये भूमिका तैयार किया मैंने। समिति के साधन प्रणाली है कि जहाँ आपको साधन में लगे कि बड़ी कठिनाई हो रही है, तो ऐसा सोचिए कि उस कठिनाई के साथ संघर्ष मत कीजिए। ध्यान नहीं लग रहा है तो बाहर से जबरदस्ती करके ध्यान को पकड़ने की चेष्टा में मानसिक रोग पैदा मत कीजिए। लौट करके चले जाइए पीछे, कहाँ चले जाइए, ध्यान क्यों नहीं लगा भाई। स्वामी जी महाराज कभी कभी गीता भवन की चर्चा है, गीता भवन में बैठे बैठे कर देते, अरे भैया मरे हुए संबंधियों को नहीं भूलते हो और जीता जागता सर्वत्र सदैव विद्यमान परमात्मा को भूल जाते हो। मरे हुए संबंधियों को याद करते रहते हो, हाय मेरा चला गया, अरे तेरा था तो चला देते थे भाई, अभी चला गया वो तेरा कैसा रहा भाई। और जीता जागता सर्वत्र सदैव अनादि अनंत विद्यमान परमात्मा और तुम परमात्मा के विश्वासी और तुम्हें लाज नहीं लगती कहने में कि उसकी याद नहीं आती है। कोई बात नहीं, अगर अपने भीतर हम लोग ऐसा ट्वीट करते हैं कि क्या बताएं उनकी विस्मृति हो जाती है, तो जबरदस्ती याद करने की क्रिया से याद नहीं बनेगी, जबरदस्ती काम नहीं करता है। तो पीछे थोड़ा सा हटके देख लो अपनी दशा, सत्संग करने का जो पुरुषार्थ था उसमें कहीं कमी रह गई होगी, इसलिए साधन की अभिव्यक्ति नहीं हुई, तो उसमें कमी क्या रह गई थी, तो उसमें कमी अगर खोजिएगा आप तो यही मालूम होगा कि सचमुच जिससे नित्य संबंध है केवल केवल वही मेरा संबंधी है और कोई है नहीं और किसी से संबंध हो सकता नहीं। इस सत्य की स्वीकृति में कच्चापन रह गया, इसलिए उसके अतिरिक्त और अनेकों जगह पर मेरा लगाव जुटा हुआ लग गया। तो याद करने के लिए अभ्यास नहीं करना है और ध्यान को केंद्रीभूत करने के लिए मानसिक क्रियाओं को चारों ओर से पकड़ पकड़ कर एक जगह लाने की व्यर्थ चेष्टा नहीं करनी है। ये तो बिल्कुल मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि जहाँ संबंध मानेंगे उसका स्टैंप लगेगा और जिसका स्टैंप लगेगा शांति काल में वो उभर के सामने आएगा। तो जिसका ध्यान अपने आप आने लगे, जिसकी याद अपने आप आने लगे, उसका स्टैंप लगाना जरूरी है। और उसके लिए अगर परमात्मा को हम लोगों ने चुना है तो उन्हीं को अपना मानो, उन्हीं से संबंध रखो, उन्हीं की प्रियता को अपने जीवन का लक्ष्य मानो। तो इस सत्य की स्वीकृति से असत्य का नाश हो जाता है और साधन की अभिव्यक्ति हो जाती है। और जो बात साधक के जीवन से सहज से आ जाती है वो फिर बनती बिगड़ती टूटती घटती बढ़ती नहीं। तो साधन तत्व है और उसकी अभिव्यक्ति होती है, मनुष्य का संपूर्ण व्यक्तित्व उस साधन तत्व के साथ मिलकर एक हो जाता है। आपने सुना होगा एक वचन में महाराज जी ने ये कहा कि भाई देखो कभी ध्यान लगे और कभी हटे, ऐसा जब तक पता चले तब तक समझो कि परमात्मा ने ध्यान लगा ही नहीं, क्योंकि उनमें जब लग जाता है तो फिर हटने की समस्या नहीं रहती। इसका भी बड़ा भारी वैज्ञानिक और दार्शनिक और आर्थिक आधार है, बड़ा जोरदार पृष्ठभूमि है, उसमें लग जाने के बाद फिर हटने का प्रश्न नहीं होता। और भक्तों के जीवन में आपने सुना ही होगा
तो इतनी बढ़िया बढ़िया सरस कथाएं हैं, एक बार लग गया तो फिर उस साधक को ऐसा कभी नहीं किया जाता है कि अब हट गया हो, हटता नहीं है। क्यों, क्या होता है? तो भाई देखिए, जिससे हमारी जातीय एकता नहीं है, नित्य संबंध नहीं है, आत्मीय संबंध नहीं है, उससे हमारा लगाव कभी बना ही नहीं है। जबरदस्ती करके भ्रम से हमको लगा हुआ लगता है और छूटता है, उससे हमारा जुटना कभी होता ही नहीं। इसका प्रमाण क्या है कि दृश्य जगत में जहाँ जहाँ आप अपनी ओर से संबंध मानते हैं, ममता के तारे से बांधते हैं, वो आपके साथ घुल मिलकर एक नहीं हो पाते, हमेशा ही दृश्य में आपसे अलग आपका दृश्य बनकर रहते हैं और चिंतन में आपसे अलग आपका मानसिक चित्र बन के रहता है, एक नहीं होता। तो भीतर या बाहर, आंखें खोल कर देखो तो बाहर, आंखें बंद करके देखो तो भीतर, जो आपका दृश्य बन सकता है उससे आपका एकत्व नहीं हुआ। समझ में आता है, ये मैं हूँ और ये एक यंत्र है, ये मैं हूँ और ये भाई बहन बैठे हैं। तो जो मेरा दृश्य बन सकता है, इंद्रियों का दृश्य कहो, बुद्धि का दृश्य कहो, स्थूल दृश्य कहो, सूक्ष्म दृश्य कहो, बाहर का दृश्य कहो, आंख बंद करके भीतर मानस पटल पर देखो, जो दृश्य बन सकता है वो जीवन नहीं है, जो दृश्य बन सकता है वो सदैव ही आपसे भिन्न है। ठीक है, इससे हमारा एकत्व नहीं हुआ। इसलिए संजी महाराज ने कहा कि भाई जब तक तुमको ऐसा लगता है कि अब तो ध्यान लग गया और ऐसा लगता है कि अब तो टूट गया, तो ऐसा समझो कि अभी बना ही नहीं है। लेकिन जिससे हमारी नित्य, जिससे हमारा नित्य संबंध है, जिससे हमारा हमारी जातीय एकता है, जिससे हमारा आत्मीय संबंध है, उसमें जब लगता है तो दो नहीं रह जाता जी, तब वो दृश्य नहीं बन सकता, तब आप उसके दृष्टा नहीं रह सकते। तब क्या होता है कि दोनों के बीच की दूरी खत्म हो जाती है। तो अनुभवी संत क्या करते हैं, गई पुतली नोन की हाथ समुद्र की ले, आप मिल पानी भई उलट कहे को बैन। फिर भक्तजन क्या कहते हैं, जब हम है तब हरि नहीं, अब हरि है हम नाय, प्रेम गली के सांस गली तामिनी द्वैर समाय। ये हो गया,
मान
ले
तो बड़ा
आस्था है। हाँ,
तो बड़ा
जी हाँ, बहुत बढ़िया बात है। बड़ा आस्था को इसलिए सामने रखना पड़ेगा कि घर से चलते समय कहाँ का टिकट लिया है इसकी जानकारी जरूरी है, कहीं गलत गलत जगह को नहीं अपना अपना लक्ष्य बना लिया है तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो साधक को जब कभी अपने को साधक स्वीकार करना है तो उसको यह बात बहुत स्पष्ट जान लेनी चाहिए कि मेरा साधु क्या है, मेरा पंथ कौन सा है। इसलिए पराकाष्ठा की बात सामने आ गई। और आज हमारी हमारा वो अनुभव नहीं है, अभी अभी उसको हम लोगों ने जीवन में अनुभव नहीं किया है, लेकिन उस सत्य को अपने सामने रख कर फिर चलना होगा। इसीलिए वहाँ तक की चर्चा जरूरी है। सुना दिया मैंने। तो साधन प्रणाली क्या हुई? साधन प्रणाली ये हुई कि जीवन के सत्य को स्वीकार करो। सत्य की स्वीकृति हमारा पुरुषार्थ है और साधन की अभिव्यक्ति अपने आप होती है। जो साधन जीवन में से अभिव्यक्त होता है उसके साथ हमारी एकता होती है। फिर साधन का संपूर्ण व्यक्तित्व साधन तत्व में बदल जाता है। तो साधक साधन तत्व होकर साध्य से अभिन्न होता है। ये फॉर्मूला है। मैंने पुरुषार्थ किया। क्या पुरुषार्थ किया? जीवन से सत्य को स्वीकार किया। उसका परिणाम क्या हुआ? सत्य की स्वीकृति से साधन का निर्माण हुआ। उसका परिणाम क्या हुआ? साधक का व्यक्तित्व और साधन तत्व मिलकर एक हो गया। उसका परिणाम क्या हुआ? संपूर्ण व्यक्तित्व साधन तत्व होकर साध्य से अभिन्न हो गया। तो प्रक्रिया पूरी हो गई। ये प्रणाली है। और आगे प्रश्नकर्ता भाई ने लिखा है मूक सत्संग। इसमें भी बहुत ही गहन दर्शन है। और वो क्या है कि शरीरों के साथ मेरा तादात्म्य होने के कारण एक जड़ता जो जीवन में छाई रहती है उसी के परिणाम से बनने बिगड़ने वाला सत्य प्रतीत होता है और सदा के लिए रहने वाला दूर छिपा हुआ मालूम होता है। संदेह रहता है कि नहीं है। तो अब जिसको अविनाशी जीवन से अभिन्न होना है उसको क्या करना पड़ेगा? तो नाशवान से अपना तादात्म्य तोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना? तादात्म्य शब्द इंग्लिश में आइडेंटिफिकेशन उसका बहुत अच्छा अर्थ बताता है। अपने को इसके साथ मिला लेना, ये मैं हूँ ऐसा मान लेना। तो शरीरों से तादात्म्य रख कर अविनाशी जीवन के आनंदमय अनुभव से हम लोग वंचित रह रहे हैं। थोड़ा थोड़ा सुख तो मालूम हो रहा है, अच्छा लग रहा है, लेकिन वो अच्छा लगना निरपेक्ष नहीं है। वस्तु व्यक्ति परिस्थिति अवस्था इनकी अनुकूलता पर आधारित है। और अलौकिक जीवन का आनंद जो होता है वो वस्तु व्यक्ति अवस्था परिस्थिति इंद्रिय बुद्धि मन चित्त शरीर इनके संयोग पर आधारित नहीं जाता और स्वतंत्र जो होता है। तो अब मूक सत्संग की जरूरत क्यों पड़ गई? तो इसलिए पड़ गई कि शरीरों से तादात्म्य को तोड़ना जब अनिवार्य फैक्टर हो गया सब प्रकार के साधकों के लिए, तो उस दशा में मौलिक साधना किस प्रकार की होनी चाहिए कि जहाँ हम कह सकें कि अच्छा आवश्यक कार्य को पूरा करने के बाद सही प्रवृत्ति के बाद अब सहज निवृत्ति में रहो। क्यों? प्रवृत्ति के लिए शरीरों का सहारा लेना जरूरी होगा। तो जहाँ जरूरी है वहाँ उनका सहारा लिया, काम किया, फिर उनको रख दो। तो काम ऐसा करना है अपने को कि बिना किए हम रह सकें, करने का राग मिट जाए। और राग रहित होने की जरूरत क्यों पड़ी? कि हम शरीरों से तादाद में तोड़ सकें और शरीरी जीवन में प्रवेश पा सकें और शरीरी जीवन के आनंदमय अनुभव को ले सकें और शरीरी परमात्मा के अलौकिक प्रेम का व्यापक प्रभाव जब हो जाए तो ये शुद्ध अति शुद्ध अहम रूपी अणु की परिच्छिन्नता टूट करके साधक का संपूर्ण व्यक्तित्व प्रभु की उस रसमयी विभूति में समा जाए।
ये आवश्यकता
है। इसके लिए मुख सत्संग अनिवार्य है। अशुभ कर्मों का तो मनुष्य के जीवन में कोई स्थान ही नहीं है। शुभ कर्म भी करने का संकल्प जब तक है, शरीरों का साथ हम नहीं छोड़ सकते, उस संकल्प को नहीं छोड़ सकते, तो शरीरों से असंग होना साथ नहीं बनेगा। शरीरों की आवश्यकता अनुभव करेंगे तो उसका महत्व जीवन में से नहीं निकलेगा। तो शुभ कर्म करने के बाद भी करने का यंत्र कर्म और उसके फल और कर्तापन के अभिमान सबसे छूटेंगे तो अशरीरी जीवन में प्रवेश होगा। ठीक है, तो जिसको अशरीरी जीवन चाहिए, जिसको अलौकिक जीवन चाहिए, उसको लौकिक तत्वों से बने हुए शरीरों का साथ छोड़ना जरूरी है कि नहीं? तो सुसाइड करने से साथ नहीं छूटता है, आत्महत्या करने से साथ नहीं छूटता है, आसक्ति छोड़ने की बात है। शरीर को ले जाकर गंगा जी में कछुआ को खाने के लिए दे दो तो इससे काम नहीं बनेगा। उसकी जरूरत आपके भीतर रह गई तो प्रकृति माता को फिर से काम करना पड़ेगा। कहीं से मिट्टी, कहीं से पानी, कहीं से प्राणवायु जुटा करके आपको फिर पर बना करके धरती पर रखना पड़ेगा। तो काम बढ़ाना भी चाहिए ना अपना, तो प्रकृति का ना तो महत्व होता। इसलिए कुछ न करने का जो तथ्य है उसको दैनिक जीवन में स्वाभाविक बनाने की सलाह संत महाराज ने दी। तो जहाँ जहाँ जन समूह को सहयोग देने की बात है वहाँ सहयोग दे दो। जहाँ इस शरीर की सेवा का प्रश्न है उसको छोटा रख के, स्वास्थ्य पर रख के, पवित्रता रख करके इसकी भी सेवा कर दो।